پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ موسلادھار بارشوں کے باعث پاکستان کے مختلف دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے، اور حکام نے سیلاب کے خطرے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے NDMA کے مطابق دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج کے علاوہ مختلف ندی نالوں میں سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد سمیت صوبہ پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کی شام سے موسلادھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو جمعے کو بھی وقفے سے جاری ہے۔ اور راولپنڈی میں بارش کے باعث ایک مکان کی چھت گرنے سے کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ سیالکوٹ کے قریب پسرور میں چھت اور دیوار گرنے سے 5 افراد ہلاک ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب اور کشمیر میں بارشوں کے باعث ہونے والے حادثات میں 26 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے جمعے کو تصدیق کی کہ موجودہ سیاسی کشیدگی اور پارلیمان کے سامنے دھرنوں کی وجہ سے چینی حکومت نے صدر شی جن پنگ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق سرتاج عزیز نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کو بتایا کہ چینی عہدیداروں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ صدر شی جن پنگ کے دورہ اسلام آباد کے حوالے سے جلد از جلد دوبارہ تاریخوں کا تعین کیا جائے گا۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ اس حوالے سے پاکستانی عہدیدار چینی حکام سے مسلسل رابطوں میں ہیں۔ افغانستان کی صدارت کے دونوں امیدواروں نے نیٹو کے رہنماؤں کو یقین دلایا ہے کہ وہ قومی حکومت تشکیل دینے کے اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ نے یہ بیان جمعرات کو برطانیہ میں ہونے والے نیٹو کے سربراہ اجلاس کے آغاز کے موقع پر جاری کیا۔ کابل سے جاری کیے جانے والے بیان میں دونوں رہنماؤں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ قومی حکومت تشکیل دینے کے بعد حسب وعدہ افغانستان میں تعینات غیر ملکی فوجی دستوں کی موجودگی میں توسیع کے مجوزہ معاہدوں پر دستخط کر دیں گے۔ امریکی حکومت نے صومالی جنگجو گروپ الشباب کے لیڈر احمد عبدی گوڈین کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ پینٹیگون کے پریس سیکرٹری ریئر ایڈمرل جان کربی نے ایک بیان میں کہا کہ محکمہ دفاع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ گوڈین پیر کے روز صومالیہ میں امریکی فوج کے فضائی حملے کے نتیجے میں مارا گیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ ایک امریکی ڈرون نے پیر کے روز جنوبی صومالیہ میں الشباب کے لیڈروں پر میزائل داغے۔ گوڈین 2008 سے شباب کی قیادت کر رہا تھا۔ امریکہ نے اسے انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اطلاعات کی فراہمی پر $7 ملین تک کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے اس کی موت کو افریقہ میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے سب سے بڑے گروپ کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے نے ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ ادارے نے ایران کے جوہری پروگرام پر شکوک کو دور کرنے کے لیے تحقیقات میں بہت کم پیش رفت کی ہے۔ IAEA نے جمعے کے روز کہا کہ تحقیق میں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور تفتیش میں اس ناکامی سے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان مذاکرات میں خلل پڑ سکتا ہے۔ یہ بات چیت ایک جامع سمجھوتے کی کوشش میں ہو رہی تھی۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت کا اگلا دور اس مہینے کے آخر میں ہونا ہے۔ اور یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے اپنے ملک کی مسلح افواج کو حکم دیا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف 5 ماہ سے جاری فوجی آپریشن فوراً ختم کر دیں۔ ویب سائٹ پر پوسٹ کیے جانے والے ایک بیان میں مسٹر پوروشینکو نے کہا کہ انہوں نے یہ حکم یوکرین کی آرم فورسز کے جنرل اسٹاف کو دیا ہے کہ وہ جمعے کی شام تک یہ لڑائی بند کر دیں۔ یہ اعلان اس کے بعد آیا ہے جب یوکرین کے نمائندوں اور علیحدگی پسندوں اور روس اور آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ نے جمعے کے روز بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ایک فائر بندی معاہدے پر دستخط کیے۔ موزمبیک کے صدر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کے باعث 2 سال سے جاری ایک نچلی سطح کی لڑائی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی۔ पेशकश यास्मीन जमील।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम हरदम रवां है जिंदगी के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रहे हैं प्रोड्यूसर वीटो मीर और इंजीनियर लिनस रिमकस। हमारा ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तान और भारत के लिए रेडियो पर, जबकि दुनिया भर में हमारे सुनने वालों के लिए इंटरनेट पर बराह रास्त नशर हो रहा है हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आप इसकी रिकॉर्डिंग प्रोग्राम के बाद किसी भी वक्त सुन भी सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। जबकि इस प्रोग्राम को इस वक्त हमारे फेसबुक पेजेस पर भी लाइव सुना जा सकता है, जहाँ आपको इसका लाइव ब्रॉडकास्ट लिंक दस्तियाब है और हमारे मेहमान का तस्वीरी तारुफ भी। जबकि इसकी रिकॉर्डिंग प्रोग्राम के बाद मुस्तकिल तौर पर हरदम रवां है ज़िंदगी के फेसबुक पेजेस पर पोस्ट कर दी जाएगी, जिसे आप किसी भी वक्त सुन भी सकेंगे, शेयर भी कर सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। हमारे लिंक्स हैं facebook.com/हरदम रवां है ज़िंदगी और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu। और इन्हीं पेजेस पर आप हमारे मेहमानों के लिए सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान हमारे मेहमानों से सवाल पूछने के लिए मुफ्त कॉल का हमारा नंबर होता है 0800-777-789। तो लीजिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवां है जिंदगी में आज हमारे मेहमान हैं ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटी की एक मुमताज और कामयाब कारोबारी शख्सियत, जो कारोबारी दुनिया के इंतहाई कामयाब अफराद को कामयाब कारोबारी अफराद से मुंसलिक करके उन इंतहाई कामयाब अफराद को मजीद कामयाब और उन कामयाब अफराद को तेजी से इंतहाई कामयाब कारोबारी अफराद बनने में मदद दे रही है। हमारे मेहमान हैं एक डिजिटल मैगजीन्स पब्लिशर और जॉइंट वेंचर्स की एक कंपनी जेवी जीनियस के फाउंडर और सीईओ मोहम्मद सिद्दीक, जो कारोबारी दुनिया के एक जदीद तरीन प्लेटफॉर्म पर कारोबारी दुनिया की एक जदीद तरीन कम्युनिटी को जदीद तरीन अंदाज से कारोबार करने और उसमें हैरत अंगेज कामयाबी हासिल करने में मदद करती है। पाकिस्तान के शहर रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और अमरीकी रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा के एक कामयाब बिजनेसमैन मोहम्मद सिद्दीक इस वक्त 4 डिजिटल मैगजीन्स के पब्लिशर और जॉइंट वेंचर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए आम कारोबारी अफराद को भी कारोबारी पार्टनर्स और सरमायाकार तलाश करने और कामयाब बिजनेस के तरीके सीखने में मदद देते हैं। हमारे मेहमान मोहम्मद सिद्दीक इस वक्त मौजूद हैं जॉर्जिया अटलांटा से टेलीफोन पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सिद्दीक साहब।
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स सच एन ऑनर एंड ब्लेसिंग।
बेहद शुक्रिया आपका कि आपने अपने बेहद कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला प्रोग्राम हरदम रवां है जिंदगी के सुनने वालों के लिए। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं और आपसे हमारा पहला सवाल ये है मोहम्मद सिद्दीक साहब के पाकिस्तान के शहर रहीम यार खान के चक 106 से 17-18 साल कबल कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की एक डिग्री के साथ और जेब में अपने एक दोस्त खलील अहमद से $3,750 उधार लेकर पहुंचे थे आप कनाडा के शहर टोरंटो में, जहां आपका कोई एक भी जानने वाला मौजूद नहीं था, लेकिन आपने सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अंदर हासिल की एक मल्टीनेशनल कंसल्टिंग कंपनी में कंसल्टिंग की जॉब और चंद ही साल में अपनी एक कंपनी शुरू करके कामयाब कारोबारी शख्सियत बन गए। तो कैसे, कुछ सुनाइए हमारे सुनने वालों को ये कहानी अपने कामयाब कारोबारी सफर की।
अगेन आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का, और मेरी बहुत आनंद है कि मैं अपने लोगों से ही अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ ना।
जी जी बिल्कुल।
ये मतलब मैंने मैट्रिक जो है 84 में रहिंगा खान से किया है, और बल्कि पायलट हाई स्कूल में ऐसे बात कर रहा हूँ, चूँकि आई एम श्योर काफ़ी सारे मेरे क्लास फेलो भी सुन रहे हैं। और मैं गाँव जो है शहर से 5 माइल दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, 106 पी, वेरी क्लोज टू पतन मनारा, वो एक हिस्टोरिक प्लेस है, तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो लेकिन बंदा जितना भी बाहर रहता है, हमेशा आपको अपना गांव जहाँ से आप होते हो ना, यू आर मोर अटैच टू दैट थिंग, आप कभी भी नहीं जाते, بلکہ میں نے انٹرویو کے بعد چیک کیا کہ میرے بعد ابھی تک میرے گاؤں سے کوئی تقریباً 250 سے 300 فیملیز رہتی ہیں, کسی بندے نے ماسٹر ڈگری نہیں کی.
اور آپ اس گاؤں کے 17-18 سال کے بعد بھی پہلے شخص ہیں جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی ماسٹرز نہیں کر سکا.
جی جی, دیٹس انفارچونیٹ, یہ ہمارا ریالٹی ہے بیسیکلی. ان شاء اللہ دیٹ پرابلی ول چینج بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو ایز مچ ایز آئی کین ناؤ اینڈ آئی واز ڈوئنگ بیفور ایز ویل. تو اس کے بعد میں 96 میں May 27 آن اے ٹیوزڈے اینڈ 96 آئی لینڈڈ ان ٹورنٹو. میرا تو کوئی جاننے والا نہیں تھا اور وہاں سے سیدھے ہوٹل میں گئے اور 3 دن میں اپنی جو یلو پیجز ہوتی ہے یہ جو ہوٹل کے ڈیسک میں ہوتی ہے وہاں سے اٹھا کے جتنے ریکروٹرز ہوتے ہیں نا یہ جو جاب آپ کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں
جی
ان کو میں نے ایک طرف سے پکڑ کے, میں کسی کو جانتا تو نہیں, ان کا فون نمبر اٹھا کے, انگلش تو ابھی بھی اتنی نہیں بولنی آتی, اس وقت کتنی آتی ہوگی.
اچھا,
تو ان کو بس ایسے کالیں شروع کر دی, ایک جیسے آپریٹر نہیں کال کر رہا تھا, کال پہ کال کر رہا تھا.
جی جی,
صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کانسٹنٹلی میں کال کر رہا ہوں, انگلش بھی بہتر ہو رہی ہے, کوئی نہ کر رہے ہیں کوئی ہاں کر رہے ہیں, جیسے بھی ہوا. بلکہ 3 دن بعد وہ جو ہوٹل کا فرنٹ ڈیسک کا آپریٹر ہوتا ہے نا, جو مینیجر ہوتا ہے سامنے جہاں سے چیک ان کیا تھا ہوٹل میں,
جی جی,
وہ آگے کہتا ہے کہ وہ اس نے ناک یا ڈور میرے کے, یہ میں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ کہتا ہے آپ کی میں نے فون لائن چیک کرنی ہے. میں کیا ہوا؟ کہتا وہ خراب ہے شاید, وہ لائن لائٹ اس کی آن ہوتی ہے نا جب کمرے سے کال ہو رہی تھی تو ان کو پتا چل جاتا کہ اس کمرے کی لائٹ آن ہے نا.
جی,
تو وہ آئے اور کہتا یہ خراب. میں کہنے نہیں وہ ٹھیک ہے, میں فون پہ ہوں نا. وہ کہتا یہ تو آپ, ہمارے تو پورے 4 لائنیں ہیں, 50-100 کمرہ ہے ادھر, تو آپ تو ایک لائن تو آپ ہی 3 دن سے استعمال کر رہے ہو.
اچھا,
میں نے وہ ہفتے کے لیے بک کیا ہے, اس کے ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے, آپ کو ہفتے کے یہاں سے نکلنا ہے.
اچھا,
اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ اس میں درمیان میں بریک بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استعمال کر سکیں. لانگ اسٹوری شارٹ, ود ان آپ مجھے 3 دن میں جاب بھی ڈھونڈنی ہے اور پلس مجھے وہاں سے ہوٹل سے نکل کے کوئی اور ہوٹل بھی ڈھونڈنا ہے. آپ کو پتا ہے نا, جب آپ کو جاننے والے کوئی نہ ہو پھر کیا کرتے ہو بندہ.
بالکل بالکل,
لیکن آپ سے جو بڑی پاور ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے.
تو آپ نے پھر جب ہوٹل سے نکلے تو آپ کے پاس 3 ہفتے کے اندر اندر جاب تھی.
جی, میں 3 ہفتے میں نے اللہ کا شکر ہے وہ جاب مل گئی. اس کے بعد میں پہلی دفعہ وہاں کی لوکل مسجد ڈھونڈی, میں نے کہا مسلمان ڈھونڈتے ہیں یا ملتے ہیں پاکستانیوں سے, یہاں پہ اکیلا تو نہیں بندہ رہ سکتا نا. تو میں ملا ہوں تو ادھر مسجد میں گئے, وہ کہتے ہیں میں یہاں, آپ نئے آئے ہیں؟ میں کہا ہاں جی میں تو نئے آیا ہوں, وہ یہاں تو میں تو سال سے آیا ہوں, یہاں نوکری کوئی نہیں ہے, میں تو واپس جا رہا ہوں, میرے پاس وہ جو پیسے تھے وہ بھی ختم. اپنی بےچارے اسٹوریاں سنا رہے ہیں نا, اور میں تو اندر سے, مجھے تو میرے سے جاب ملی تھی, میں تو اس کے بعد ملنے گیا ہوں نا کسی سے.
بالکل,
اب ہر کام میں اللہ تعالیٰ بہتری ہوتی ہے, شکر ہے کہ میں کسی سے پہلے نہیں مل گیا, ورنہ تو مجھے سارے ڈسکریج کر دیتے کہ اب یہاں آ کیسے گئے ہو.
اچھا, تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک اس کنسلٹنگ کمپنی میں کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد اپنی ایک کمپنی بنا لی.
جی, یہاں 10 مہینے میں نے جاب کی ہے کینیڈا میں, اس کے بعد وہ 10 مہینے کے اندر ہی میں نے امیرکا میں ایک میرے فرینڈ تھے, ان کا نام کفیل خان ہے, مطلب ہم نے کچھ 10-12 سال اکٹھے کام کیا ہے.
اچھا,
ابھی بھی فرینڈ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا.
تو پھر اپنی الگ کب ہوئی وہ کمپنی, اور کیا کمپنی تھی وہ؟
نہیں, وہ مطلب پارٹنرشپ ان کے ساتھ کر لی, بلکہ ہوا یہ کہ وہ مطلب وہ میں نیا تھا, وہ تو یہاں سے بڑے سالوں سے رہ رہے ہیں, تو مجھے کہتا ہے اچھا آپ کو میں وہ نا 10% دیتا ہوں, جیسے نا اسمال 10% شیئر ہوتا ہے.
جی جی,
باقی یہ کہ آپ نے وہ مطلب کام کریں گے, دیکھیں گے رزلٹ, دیکھیں گے تو میں کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے ایک دفعہ بات ہوئی, میں نے کہا کفیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں 50-50 آپ سے کیسے کر سکتا ہوں, یہ میں مانگ نہیں رہا, مجھے اس کی کنڈیشن تو بتائیں نا. کہتے اس کا اتنا بزنس اتنا ہو جائے گا نا, پھر آپ کو 50-50 کر دوں گا.
اچھا,
آئی ایم ہیپی ٹو شیئر ود یو کہ 6 مہینے کے اندر اندر میں 50% پہ آ گیا تھا.
اچھا, اور پھر الگ کمپنی آپ نے کب بنا لی, کتنے عرصے میں؟
ان کے ساتھ تقریباً 3-4 سال کے بعد میں نے سائٹ پہ اپنی کمپنی کھول لی تھی لہذا نا.
اچھا,
اس کے بعد تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں کتنی کھولی ہیں, کیا ہوا ہے, مطلب ٹو مچ.
اس کے بعد کا ابھی ہم کہانی آگے بھی سنیں گے, لیکن آپ کے اس ان دوست خلیل احمد کا کیا بنا جنہوں نے آپ کو $3,750 ادھار دیے تھے؟
او یہ نا ہوا یہ کہ لاسٹ ٹائم 2005 میں میری بات ہوئی تھی ان سے, اس کے بعد نا بائی چانس رابطہ نہیں رہا, لیکن میں نے پیسے تو ان کو میں نے پرامس یہ کیا تھا کہ جب میں جاؤں گا کینیڈا میں, جب مجھے تنخواہ ملے گی اور میں آپ کو کما کے سب سے پہلے میں آپ کو دوں گا, اس سے پہلے گھر والوں کو پیسے دوں, یہ میری آپ سے پرامس ہے. وہ ہی واز سو نائس پرسن, اور ابھی بھی وہ نائس ہے. کل بلکہ پرسوں میں نے ان سے ان کو 9 سال کے بعد ڈھونڈا ہے, آپ کی وجہ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ خلیل صاحب کو ڈھونڈے.
تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان دوست خلیل احمد کو اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے سننے والوں سے ملوائیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آج کے محمد صدیق صاحب کو محمد صدیق بنانے میں اتنی بڑی ہیلپ کی تھی. صدیق صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا شکریہ سب دنیا کے سامنے ادا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح اگر آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو کتنی تبدیلیاں آتی ہیں نہ صرف کسی ایک شخص کی زندگی میں بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں. تو اب آگے چلتے ہیں. صدیق صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ڈیجیٹل میگزینس کی پبلشنگ شروع کی تو کیسے, اور ہمارے سننے والوں کو پہلے تو یہ بتائیے کہ الیکٹرانک یا ای میگزین جنہیں ڈیجیٹل میگزینس بھی کہا جاتا ہے وہ آن لائن اخبارات سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں, اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بزنس کے شعبے میں ان کا عمل دخل اور اہمیت کیا ہے؟
یہ میگزین تو بڑے پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانی انڈسٹری ہے نا. ہم ہمیشہ پیپر والے میگزین پڑھتے رہے, گھروں میں آتے تھے, ڈائجسٹ ہوتا تھا, یہ سارے ہم بک اسٹور پہ گئے میگزین لے لیا. اب جیسے جیسے یہ آئی فون آیا ہے, سیمسنگ کے فون آئے, آئی پیڈ آ گیا, یہ ایوری تھنگ از آئی آئی نو دیز ڈیز نا, تو اس سے کیا کہ لوگوں کے چھوٹے دوسرے فونوں پہ بھی انٹرنیٹ ہے. اب ہم پیپر ڈھونڈنے کی بجائے ہم کہتے ہیں مجھے لنک دے دو ابھی میں فون پہ چیک کر لیتا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے لکھ کے دے دو کسی پیپر پہ نا,
بالکل
کسی کو فون نمبر بھی جو کہتا ہے مجھے ٹیکسٹ کر دو, یہ بھی یہ چیز ہو جاتی ہے نا. یہ جو آئی فون ہے اس لائک کا کمپیوٹر آپ کے پاس ہے نا, سیمسنگ کوئی بھی اینڈرائڈ ہو یا آئی فون ہو, ویسے میں کوئی کنسرن نہیں, میں کسی کو پرموٹ نہیں کر رہا. تو اس سے کیا کہ بندے کے پاس ایک ڈیوائس ہے, آپ جتنی چیزیں اس پہ تو جو مرضی ڈال دو, پکچر ڈال لو, ویڈیو ڈال لو, جو بھی کر لو. ابھی یہ لاسٹ کوئی یہاں سے 5-6 سال میں یہ جو پبلشنگ میگزین ہے وہ بہت کم ہو رہے ہیں. اخباریں کئی تو بزنس سے باہر ہو چکی ہیں, مطلب دے آر آؤٹ آف بزنس, اور اسی طرح میگزین بھی ایسے ہی ہو رہا ہے چونکہ لوگ پرنٹ جو ہے نا وہ کم نہیں کر رہے, پرنٹ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. اب پیسے تو بندے سے زیادہ نہیں چارج کر سکتے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جو اب ٹی وی پہ بھی جو جیسے نیوز کم سنتے ہیں لوگ, آن لائن زیادہ پڑھتے ہیں نا.
جی اخبارات تو پڑھتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن یہ کہ میگزینز بھی چھپ رہے ہیں یہ عام لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو.
ہاں جی میگزین بھی چھپ رہے ہیں, دیر آر اوور ان ورلڈ دیر آر اوور 10 ملین میگزینز, 1 کروڑ میگزین اگر کروڑوں میں بات کریں نا,
تو اس وقت موجود ہیں.
اس وقت ویسے میگزین ہے لیکن آن لائن جو ہے نا ابھی یہ جو ای میگزین جو ہمیں, یہ بڑی نئی چیز ہے, یہ ابھی کوئی میرے خیال 10-15 ہزار ہوں گے ٹوٹل. اب 10 ملین اور 10-15 ہزار میں تو بڑا فرق ہے نا.
تو ان میں کیا فرق ہے, الیکٹرانک جو ای میل اخبارات ہیں اور ان میں ڈیجیٹل میگزینز میں کوئی فرق ہے, یا دونوں ایک ہی چیز ہیں تقریباً؟
اخبارات تو ہوتا ہے کہ اس میں روز کی نیوز آتی ہے نا, اس کا جو سائیکل ہے وہ اگلے دن ختم ہو جاتا ہے.
ہاں لیکن اس میں آڈیو وغیرہ ویڈیوز وغیرہ نہیں ہوتی.
ہاں جی کبھی ہوتی بھی ہیں نیوز میں بھی. اس میگزین میں ابھی یہ آن لائن چونکہ آ گئے ہیں نا, اور آئی فون یہ دوسرے فونوں پہ آپ ویڈیو بھی آڈیو بھی اس میگزین میں آپ ٹیکسٹ بھی ڈال سکتے ہو, جیسے آرٹیکل لکھے ہوتے ہیں اور اس میں ویڈیو بھی ڈال سکتے ہو.
اچھا
اس میں آپ انٹرویو, یہ والا انٹرویو بھی اس میں ڈالا جا سکتا ہے.
اچھا
اور یہ کہ اور کوئی لنک اور اسے کوئی اڈیشنل انفارمیشن چاہیے, آپ جیسے لکھا ہے اسے رابطہ بھی کر سکتے ہو. اور میگزین کا اصل جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ٹاپک وائز ٹاپک ہوتا ہے نا, نیوز تو ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی ٹائپ کی نیوز آ جائے گی نا. اب میگزین ہوتی ہے کہ وہ بزنس کو گرو کرنے کا میگزین ہے, یا فیشن کا میگزین ہے, یا فیشن ڈیزائنر کا میگزین ہے, تو وہ اس ٹاپک پہ ہی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ اور پلس میگزین بندہ اس وقت پڑھتا ہے جب وہ کہتا ہے اچھا ابھی میں آرام سے اس ٹاپک پہ دیکھتا ہوں. جیسے لیڈیز جو ہیں وہ فیشن کی چیزیں دیکھنے میں فیشن کا میگزین اٹھا کے دیکھتی ہیں نا.
بالکل. تو آپ کے جو اس وقت 4 سے زیادہ آپ کے ڈیجیٹل بزنس میگزین ہیں جو آپ پبلش کر رہے ہیں, اور آپ کی اپنی ایک کمپنی ہے جوائنٹ وینچرز یا جے وی جینیئر جس کے آپ فاؤنڈر بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو کچھ بتائیے تفصیل کہ آپ کے جو میگزینز ہیں اگر بزنس پر فوکسڈ ہیں تو کس طرح کے وہ بزنس پر وہ فوکسڈ ہیں, وہ کن کے میگزینز ہیں جن کو آپ پبلش کرتے ہیں؟
یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ دیٹس ا ویری گڈ کوسچن بائی دی وے.
جی
تو یہ جو جے وی جینیئس ہے یہ جوائنٹ وینچرز کی کمپنی ہے. میں جوائنٹ وینچر کو پچھلے 15 سال سے, جو میری سکسیس کا جو بیسک فیکٹر اگر آپ ایک چیز اٹھاؤ نا, مجھے ایک چیز بتاؤ جس کی وجہ سے آپ کو یہ کامیابی ہوئی ہے, تو وہ جوائنٹ وینچرز تھی.
اچھا
تو اب میں نے یہ دیکھا جب میں نے وہ کمپنی اپنے پارٹنر کے ساتھ ہم نے 2008 میں بیچ دی, مطلب وی میڈ سگنیفیکینٹ چینج, ویری گڈ منی. اور اس کے بعد مطلب میں نے کہا کہ اچھا اب سارا جو آپ کام کر لیتے ہو اس میں آپ نے سبق کیا سیکھا ہے, ہر کام میں تو بڑے سارے کام ہوتے ہیں, تو اس میں سے اصل جو میں نے دیکھا کہ جوائنٹ وینچر کی وجہ سے وی وار دیٹ مچ سکسیزفل. اب میں نے کہا میں اس کے بعد جو کروں گا, اور آئی ریئلی لائک دیٹ پارٹ, میں صرف جوائنٹ وینچرز ہی کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا نا.
اچھا
تو اب پھر اس کو یہ میگزین جو ہے ٹپیکلی جو ہر کوئی میگزین کرتا ہے نا, میں اس طرح نہیں کر رہا, میں ان کو جوائنٹ وینچر والا مائنڈ استعمال کر کے کر رہا ہوں. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ.
اچھا تو پھر آگے کن کن کے ساتھ مل کر رہے ہیں آپ یہ جوائنٹ؟
ابھی یہ جو لوگ ہیں اس میں ایک ہے بلینئر مینٹر میگزین, یہ آئی ٹیون پہ اگر آپ کا آئی فون ہے, آئی پیڈ ہے, اس پہ ہے, انٹرنیٹ پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے گوگل میں سرچ کریں بلینئر مینٹر میگزین, مطلب کہ آپ اس میں مطلب کر سکتے ہیں. اور یہ بلکہ یہ اس کو فری میں بھی مطلب پڑھا جا سکتا ہے, مطلب 3-4 مہینے کا کوئی پیسوں کا نہیں چکر, یہ فری میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے ٹاپ کے ایکسپرٹ ہیں نا ورلڈ وائڈ, وہ اس میں لکھتے ہیں اپنے ٹاپک پہ, دے آر لائک हंड्रेड ऑफ मिलियन डॉलर कंपनी या बिलियन डॉलर कंपनी, वो आम लोग नहीं होते ना सक्सेसफुल, वो ये शेयर करते हैं आम बंदे से, मेरे जैसे से, मैं भी स्टूडेंट हूँ सब की तरह, मैं उस मैगजीन से मैं सीख भी रहा हूँ ना, जब वो मैसेज देते हैं तो मैं उनसे क्वेश्चन में ये पूछता हूँ कि आप एक आम बंदा जो है जिसने अभी शुरू किया है काम या शुरू करने वाला है या उसने थोड़ा सा सक्सेस ले ली है, लेकिन उसमें आम बंदे उसमें और हंड्रेड ऑफ मिलियन डॉलर कंपनी में सोच में प्रोसेस में तो बड़ा फर्क होता है। हम उसे कोशिश करते हैं कि अपनी सारा जो है ना वो हमें मेंटर करे, हमें बताए स्टेप बाय स्टेप कि ये वो कैसे किया है।
अच्छा, उसके जो कारोबारी जिंदगी की कामयाबी के राज पूछते हैं आप?
बिल्कुल, राज पूछते हैं और सिंपल लैंग्वेज में। वैसे तो वो जब बात अपनी मर्जी से, जैसे आप मुझे बड़े आराम से वो सिंपल लैंग्वेज में ताकि आपके ऑडियंस को समझ आ जाए
जी,
ये इस तरह मैं बता रहा हूँ ना, वो इसी तरह ही मैं उनसे पूछता हूँ, ये जो आप काम मेरे साथ करी मैं दूसरों के साथ भी यही करता हूँ।
अच्छा, तो फिर वो जब वो अपने राज खोल देते हैं तो वो सारे पब्लिश होते हैं उन मैगजीन्स में?
उन मैगजीन्स में हम उनका वीडियो इंटरव्यू भी करते हैं, ऑडियो भी करते हैं।
अच्छा,
ताकि वो उसको कई दफा बंदा विजुअली ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है ना।
अच्छा, तो फिर उन मैगजीन्स को आप प्रमोट कैसे करते हैं?
मैं बेसिकली मैं मार्केटर हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ, सोशल मीडिया पे करते हैं, जैसे फेसबुक पे ओवर बिलियन लोग हैं, हम बिलियन बंदे को तो हर चीज नहीं चाहिए ना, हम देखते हैं ये मैगजीन किसको पढ़ना है, हर मैगजीन की टारगेट मार्केट होती है
जी।
जैसे ये फैशन डिजाइनर का अगर मैगजीन हुआ, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो तो लेडीज को एक सेकंड में समझ आती है ना बात,
जी जी
वो उस लेडीज को उस एज ग्रुप में इस शहर में इस कंट्री में आप टारगेट करके उन्हीं को सिर्फ शो करते, बाकियों को नहीं।
तो कैसे, यानी फेसबुक के थ्रू और क्या जरिया होता है?
और ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे 300 मिलियन लोग हैं।
अच्छा,
उनको
अच्छा।
करते हैं, मतलब हमें तो 300 मिलियन नहीं चाहिए ना, आपको तो 0.001% ही चाहिए होता है ना।
अच्छा अच्छा, तो इस तरह आप अपने उन मैगजीन्स को पब्लिश करते हैं या प्रमोट करते हैं, तो फिर जिन लोगों ने आपसे रابطہ किया या उन ओनर से रابطہ किया, तो फिर क्या होता है, उन दोनों को आप किस तरह मिलवाते हैं?
जी, इसमें मैगजीन में ना काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो हर जो बंदा है उसको कंट्रीब्यूटर कहते हैं, जो उसमें आर्टिकल लिखता है या इंटरव्यू देता है ना, वो एक्सपर्ट है ना, जैसे बुक ऑथर होता है,
बिल्कुल,
उसको कंट्रीब्यूटर कहते हैं। हर इशू में 15-20 कंट्रीब्यूटर होते हैं। अब मुझे उसका फायदा है। और ये एक ओनर होता है, उसको एडिटर इन चीफ कहते हैं, मेरा एडिटर इन चीफ से रिलेशनशिप है, ठीक है, मैं पब्लिशर हूँ दरमियान में। अब हर महीने या हर इशू में जब मैगजीन पब्लिश होता है तो मैं हर मैगजीन के थ्रू 15-20 नए बड़ी हाई टॉप क्वालिटी के लोगों से मेरा रिलेशनशिप बन रहा होता है।
अच्छा,
ये रिलेशनशिप की दुनिया सारी, आप कौन किसको जानता है,
नेटवर्किंग
ये पूरी दुनिया में ऐसा है। जैसे वो ये नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है, नॉलेज की अपनी जगह है, वैल्यू है, मैं कोई डिस्काउंट नहीं कर रहा, और आपको आप किस किस को जानते हूँ।
अच्छा, फिर जब आप उनको जान गए तो उनका आपका आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं।
डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनसे और बात करते हैं कि और बिजनेस क्या कर सकते हैं आपस में।
अच्छा,
और इमेजिन करेंगे कि जिस कम बंदे की 100 मिलियन डॉलर की, 10 मिलियन डॉलर की, मतलब रियली सक्सेसफुल कंपनी हो, हजारों उनके एम्प्लॉयज हों, वो बंदा अगर आपको कहे कि अच्छा हाँ सदीक, हम आपस में मिलकर कर लेते हैं ये काम, वो छोटा सा भी करेगा फिर भी बहुत बड़ा काम होगा ना वो।
अच्छा, तो वो जो लोग आपके पास डेटा में होते हैं उनको आप उन बड़े सरमाएकारों से फिर मिलवाते हैं?
जी, वो आपस में तो नहीं, मैं तो सबको जानता था, लेकिन आपस में नहीं जानते होते ना
जी,
वो तो एक ही करके आ रहा है ना आपके पास। अब वो कहते हैं मुझे इस तरह का बंदा मिला दें, मैं अब मेरे पास तो हर महीने आ रहे होते हैं लोग, अब मैं उनको आपस में जब मिलाता हूँ, जब आपस में कोई बिजनेस करते हैं वो, तो दरमियान में मेरा एक छोटा सा पोर्शन होता है, स्मॉल कट।
अच्छा, तो इस तरह वो फिर जब आखिरकार दोनों बिजनेस के लोग आपस में मिलते हैं, तो जिसने सरमाएकारी करनी होती है या जितना करना, तो वो फिर बाद में अपने आपस में करते रहते हैं और आप उनसे फिर अलग हो जाते हैं एक तरह से?
नहीं, मैं अलग नहीं, वो जब तक ट्रांजैक्शन आपस में करते रहेंगे ना, मेरा दरमियान में छोटा सा हिस्सा, जैसे कहते हैं मेरा छोटा सा हिस्सा होता है, वो मुझे मिलता रहेगा।
अच्छा अच्छा, जब तक कि वो बिजनेस करेंगे आपको उनका, इसको कमीशन कहेंगे फिर?
हाँ जी, आप कमीशन कह लें या।
अच्छा, तो इस तरह, तो आपके इस वक्त आप कह रहे थे कि चार मैगजीन्स हैं, तो दूसरे मैगजीन्स भी जल्दी बताइए कि वो क्या, किस बारे में?
एक दूसरा मैगजीन है लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर मैगजीन, ये जो बिजनेस जो घरों से लोग काम करते हैं, ये छोटा ऑफिस है, 2 एम्प्लॉई हैं 3 एम्प्लॉई हैं, उसमें मेजोरिटी लोगों को कहते हैं मैं जॉब नहीं करनी है, मैंने बिजनेस करना है। ये शौक तो हर एक को है ना
जी,
लेकिन उसको ये नहीं पता कि जॉब करना तो एक काम है, बाकी तनख्वाह आपको पक्की मिल जानी है, लेकिन अपने बिजनेस में तो बहुत काम करना पड़ता है, और सारा वो 40 घंटे की बजाय वो 80 घंटे हफ्ते के काम कर रहा होता है।
अच्छा,
लेकिन वो जो है ना, वो रियल उसने क्या किया, अपने लिए जॉब ढूंढ ली, बेसिकली अपनी जॉब ही ढूंढ ली है, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस वो होता है जिसमें आप मर्जी से जहाँ आना जाना भी हो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो ना, उसमें ओनली 98% जो लोग बिजनेस करते हैं वो सिर्फ अपनी जॉब ही ढूंढ रहे होते हैं, सिर्फ अपने बिजनेस में 2% लोग सक्सेसफुल होते हैं, उसको कहते हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल अर्न कर लिया है, कोई जहाँ वेकेशन पे जाना चाहे, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहे, बीच पे जाना चाहे, जो भी वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हम उन लोगों को ढूंढते हैं जो टॉप के 2% हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था और दे हैव मेड इट टू द टॉप, उनको कहते हैं कि आप ये दूसरे बिजनेस वालों को बताएं जो भी बेचारे अपने 80 घंटे हर हफ्ते काम करते हैं, वो किसी के लिए जब जॉब करता था 40 घंटे करता था, अब वो 80 घंटे काम कर रहा है, उसको बताएं कि आपने अपने आप को उससे पुल करके ऊपर कैसे लेके गए।
अच्छा, तो यही सारा कुछ हर सिस्टम में, हर मैगजीन में आप यही कर रहे हैं कि कामयाब लोगों के इंटरव्यूज करते हैं उस मखसूस शोबे के। तो उसमें एक तो आपका ये लाइफस्टाइल का मैगजीन हो गया और बाकी दो
ये एक और वर्क फ्रॉम होम मैगजीन जो लोग घरों से काम करते हैं। वैसे मैं आपके सारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं घर से काम करता हूँ, 15 साल हो गए मुझे,
15 साल से घर में बैठे इतना शानदार काम कर रहे हैं कि, और हजारों लोगों को और सैकड़ों लोगों को मजीद काम से लगा रहे हैं और उनको मजीद कामयाब बना रहे हैं कारोबार। अच्छा, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हम इनके चारों मैगजीन्स के जो लिंक्स हैं वो हम अपनी फेसबुक पेजेस पर पोस्ट कर देंगे, तो उसमें मज़ीद तफसीलात भी आपको मिल जाएंगी कि इनके ये मैगजीन जो है क्या क्या कुछ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, तो ब्रेक के बाद हम बाकी बातें करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में आज हमारे मेहमान हैं ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटी की एक मुमताज और कामयाब कारोबारी शख्सियत, एक डिजिटल मैगजीन्स पब्लिशर और जॉइंट वेंचर्स की एक कंपनी जेवी जीनियस के फाउंडर और सीईओ मोहम्मद सिद्दीक, जो कारोबारी दुनिया के एक जदीद तरीन प्लेटफॉर्म पर कारोबारी दुनिया की एक जदीद तरीन कम्युनिटी को जदीद तरीन अंदाज से कारोबार करने और उसमें हैरतअंगेज कामयाबी हासिल करने में मदद करती है। हमारे मेहमान से सवाल पूछने के लिए मुफ्त कॉल का हमारा नंबर है 0800-777-89 और फेसबुक पर ये प्रोग्राम सुनने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/hardamrawahaizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu। जी, हमारे मेहमान मोहम्मद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद अटलांटा जॉर्जिया से टेलीफोन पर। सिद्दीक साहब, हमने तो हमेशा से यही सुना कि कभी किसी जानने वाले के साथ कारोबार ना करना क्योंकि दोस्ती को नुकसान पहुंचता है और आखिरकार अलग ही होना पड़ता है, लेकिन आप जॉइंट वेंचर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या पुराने कामयाब कारोबारी अफराद के तजर्बात वाकई अब नए दौर के तकाज़ों से हम आहंग नहीं हो रहे, या आप समझते हैं कि उनकी अफादियत भी एक अंदाज से अभी तक बरकरार है?
नहीं जी, उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। अच्छा। जो हमारे बड़ों का, पेरेंट्स का, अंकल्स का जो एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा किसे कहते हैं,
जी जी,
अब तजर्बे का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने शॉर्टकट ढूंढ लिया तजर्बे का, वो कहते हैं वो क्या है, वो भी तजर्बा ही है। ठीक है
जी।
अच्छा, अब वो बड़ों का ये होता है, मतलब वो बिजनेस में हूँ या आपके पेरेंट्स हूँ, डजंट मैटर, बड़े तो बड़े ही होते हैं ना, जिनके जो इस सारे काम से गुजर चुके होते हैं, किसी भी सक्सेस करने के लिए उसका आपको, जहाँ पे आप खड़े हैं आपको पता मैंने यहाँ से यहाँ जाना है, जो भी जगह है वो, अब जिस जो वहां से 10 दफा जा चुका है ऑलरेडी उस रास्ते में, वो बताएगा यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लेफ्ट करना, यहाँ पे राइट करना, यहाँ ना करना है, वहां पे वो एरिया खतरनाक है
जी।
अब ये कि व्हाट नॉट टू डू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम करने के लिए आप कहीं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ या किसी काम पे जाओ, कहता है ये आपने 50 चीजें कर रहा हो तो मैं आपका ये काम हो जाएगा, ये कहते हैं ना, लेकिन उसमें ये नहीं बताता कि ये काम नहीं करना।
अच्छा,
वो तो लिखा नहीं होता,
वो नहीं लिखा होता,
वो नहीं, वही असल तजर्बा है। अभी आप वैसे कहते हैं, नहीं नहीं वो तो मैं बुक पढ़ के कर लूंगा जी, मैंने सदीक से बात करके क्या करनी है, ये आम सी बात है ना, बिल्कुल। अच्छा, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप क्या बुक पढ़ के अपना घर बना लोगे?
नहीं।
फिर आप जो डेवलपर बना, अपना घर बनाता है बिल्डर, उस वो उसको क्यों आप हायर करते हो? अगर आपको ये कोई मेडिसिन का मसला है, बीमार हो गया, तो आप अपनी वो बुक पढ़ के खुद ही मेडिसिन लेने आपको सब्सक्राइब कर लो, और डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? हालांकि वो भी किसी किताब से पढ़ के बता रहा है ना
जी,
लेकिन उसका तजर्बा इतना ज्यादा है कि ये वाली ऐसे खानी है, ऐसे करना है, फिर आप ठीक हो जाओगे, ये एहतियात करनी है, ये नहीं करना। अब हर काम के लिए तो आप बड़ों के पास जाते हो, लेकिन जब आप बिजनेस की बात आती हो, कहते नहीं आप मुझे बता दे, मैं खुद ही कर लूंगा।
तो आप ये कह रहे हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई उस्ताद आपका आपको पहले आपको बताए
ये इससे। तो देखें, आप स्कूल में या बच्चा जब चलना शुरू होता है, वो पेरेंट्स उसके उस्ताद ही होते हैं। जब वो कहते बच्चा आप चलो, गिरेगा तो हाथ पकड़ लेगा, हालांकि बच्चा वो एंड पे चलना शुरू करता है, लेकिन वो साथ साथ उसको वॉच कर देते हैं, बता रहे थे ऐसे करना ऐसे नहीं करना। उसके बाद आप स्कूल में जाते हैं, किंडरगार्टन, प्राइमरी, हाई स्कूल, सारा हमेशा, तो आपने 16 आपने एमएससी किया है, हाई स्कूल में जो भी किया है, आप उस साथ के साथ साथ काम करते रहे हो। और उसके फौरन बाद आप कहते हैं अच्छा मैंने बिजनेस अपना शुरू करना, भी आपने क्या सीखा, मैं खुद ही कर लूंगा पढ़ पुढ़ के, ये कोई सेंस नहीं बनता इस बात का वैसे ना। ये मैं मुझे भी वैसे पहले नहीं पता था, जब मैंने सोचा कि हाँ ये ऐसे है, जब मेरे मेंटर्स हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, उससे फिर मुझे इसकी वैल्यू नजर आई। दैट्स व्हाई कि आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किसी कोई भी आपने काम करना हो, कोई भी, वो मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मेरे से पूछे, आप उस फील्ड के जो टॉप के लोग हैं ना, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल उसी फील्ड में है, उनके जैसे कहते हैं ना पाँव पड़ जाओ कि आप मुझे सिखाओ।
अच्छा,
वो आपको बताएंगे क्या करो और क्या ना करो। जो ना करने वाली बात है ये उससे भी ज्यादा है, जो करने वाली तो बुक में ही पढ़ लोगे,
लेकिन ना करने वाली बात वो बताएंगे जो जो उसके शोबे के माहिर होंगे। तो पहली चीज़ ये कि आप किसी माहिर के साथ रابطہ करें। लेकिन अब माहिरीन को ढूंढना खास तौर पर आजकल के दौर में और उनसे रابطہ करना कोई आसान काम आप समझते हैं?
बल्कि आज के दौर में इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम सारे लोग फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, आप तो सारे लोग उधर है ना, हम फेसबुक पे लोगों की तस्वीरें देखते हैं, बातें करते हैं, ये वो जो भी, मुझे अंगेज नहीं है, जो जिसका दिल करता है वो करे, मैं कोई मसला नहीं है। वहाँ पे वो बंदा, वो उससे विजडम सीख करने के लिए तो बंदा अवेलेबल है ना। हाँ, आप उसे चिट चैट करने की बजाय, ऐसी गपशप लगाने की बजाय आप काम की बात कर लो उससे।
लेकिन क्या कोई ऐसी, चले इससे पहले मैं आपसे ये सवाल कर लूँ कि ऑनलाइन जो बिजनेस है आजकल, इसकी अहमियत क्या है और किन किन शोबों में आजकल ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है या हो रहा है?
जो आप सोच सकते हो ना वो हो सकता है।
अच्छा, तो जो आदमी कुछ सोचे, तो क्या कोई ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां वो जाकर अपने इन्वेस्टर्स ढूंढ सके, अपने जॉइंट वेंचर्स ढूंढ सके?
हाँ जी, ये जॉइंट वेंचर ढूंढना और इन्वेस्टर ढूंढना ये सब कुछ पॉसिबल है, बल्कि आजकल तो होता ही सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन से शुरू होता है, बाद में मिलते हैं, बात करते हैं, कनेक्शन जो है ना ऑनलाइन बनता है।
तो क्या आप मशवरा देंगे इस वक्त जो लोग चाहें कि उनको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएं, कुछ ऐसी हैं मशहूर जो आप रेफर कर सकें इस वक्त?
जी बिल्कुल, उसमें ये एक सबसे पहले तो मैं वो वेबसाइट देता हूँ जो लोग कहते हैं ये मेरा लड़का लड़की जो है ना मैट्रिक की हुई या हाई स्कूल किया हुआ है और कॉलेज में पढ़ रहा है, अब मेरे पास ना वो वैसे नहीं अफोर्ड करने के, बच्चा भी कुछ ना कुछ साथ में करना चाहता है लेकिन बाहर नौकरियां नहीं है, सब ये सबसे बड़ा मसला तो ये है ना। क्योंकि मुझे पता है मैं भी अपने पेरेंट्स से मतलब डिपेंडेंट था ना, हम सारे डिपेंडेंट होते हैं ना अपने बड़ों पे।
बिल्कुल,
उसके लिए ये वेबसाइट नोट करें, फाइवर, FIVER. जैसे डबल आर पाकिस्तान में कहते हैं,
fiverr.com fiverr.com वो वेबसाइट है जहाँ पर वो लोग जाकर क्या करें,
वहाँ पे आपको जो भी काम आता है, आपको ग्राफिक डिजाइनर करना आता है, आपको सॉन्ग सिंग करना आता है, आपको किसी को बर्थडे विश करना आता है, मैं छोटी सी बात है, वो हर काम $5 में होता है।
अच्छा,
और यहाँ पे मिलियंस लोग दुनिया में बैठे काम कर रहे हैं, आप एक में दो, और ये वेबसाइट फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं आपसे मांगेंगे, आप काम करोगे तो पैसे देंगे, लेंगे नहीं आपसे कभी भी, इसमें वो होता है ना ऑनलाइन ये फ्रॉड है कोई, ये सबसे पहले कहते हैं ये कोई फ्रॉड है।
अच्छा अच्छा,
ये फ्री में है, मुझे पता है पाकिस्तान से लोग समझते हैं कि वो फ्री है, हाँ ठीक है।
तो फिर वहाँ चले जाएंगे। तो फेसबुक पर सवाल पोस्ट किया था कैसर खान खटक ने कि वो कोई कारोबार करना चाहते हैं तो क्या करें, इसी तरह फारूक आफरीदी ने लिखा था कि वो MBA के एक तालिब इल्म है और वो कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो क्या करें। तो अब आपका जवाब उनके लिए, एक तो ये वेबसाइट हो गया और क्या उनसे कहेंगे?
ये जिन्होंने MBA किया हुआ है इसका मतलब वो तो ज्यादा एजुकेटेड है ना।
हाँ, नहीं अभी MBA किया नहीं है, स्टूडेंट है, लेकिन जिस तरह आपने भी कहा
मतलब आपके दिमाग में तो ये साल बाद 6 महीने बाद MBA खत्म हो जाएगा ना।
जी 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 जी।
हाँ, उसके बाद वो क्या करे, अब वो जिस टाइप का वो कोर्स कर रहा है फिर उसके अंदर उसका इंटरेस्ट किस चीज का है, उसका अंदर से जो इंटरेस्ट है, पैसों के लिए ना काम करना कभी भी, जो भी आप काम सिर्फ पैसों के लिए करोगे उसमें फेल है। मैंने अभी तक सक्सेसफुल बंदा पैसों के लिए काम करता हुआ नहीं देखा एक भी। जिसको अंदर से आपको ये मुझे मार्केटिंग अच्छी लगती है, मुझे फाइनेंस अच्छी लगती है, वो अकाउंटिंग, ये सवाल अगर ज्यादा क्वालिफाई करके पूछते ना कि ये मैं चीज, ये चार चीजें हैं, ये मैं कर रहा हूँ, ये चार चीजों को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें से आपका क्या मशवरा कि ये कौन सा, इसकी मार्केट आजकल है या नहीं है, वो एक मोर अच्छा स्पेसिफिक सवाल होता ना। लेकिन ये जो कैसर साहब है, ये दूसरे साहब है, ये अगर उस नंबर, मैं नंबर देता हूँ, अगर उस पर मुझे टेक्स्ट कर दें, हमें टेक्स्ट कर दें, तो मैं इनको फॉलो अप करके जवाब दे दूंगा। मैं आई वांट टू हेल्प एज मेनी एज पीपल आई कैन।
तो आप अपना टेक्स्ट के लिए जो मैं देना चाहें तो वो दे दीजिए नंबर इस वक्त।
जी ये नंबर है, ये अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो 001 करना पड़ेगा शुरू में, अगर आप दुनिया पूरी दुनिया से कर सकते हैं जीरो, अगर आप यू अमेरिका से कर रहे हैं तो फिर आपको 001 नहीं करना पड़ेगा, इतना फर्क है। नंबर है 404-418-6019।
अच्छा 001 लिखकर 404-418-6014
6019।
अच्छा,
और ये नंबर फ्री, ये टैक्स फ्री करना है, मैं हमें कोई चार्ज नहीं करता मैं, ठीक है।
अच्छा
वो जो मैसेज है, जब हम बॉडी पे मैसेज लिखते हैं ना, वहाँ पे लिखें जिंदगी, ZINDAGI,
जिंदगी, यानी जैसे हरदम रवा है जिंदगी के हवाले से, क्योंकि आप बात करेंगे तो जिंदगी लिख कर और फिर आप ये नंबर आगे डायल करें या टेक्स्ट मैसेज करें इस पर, तो वो तफसील आपके पास भी पहुंच जाएगी और हमारे पास हरदम रवाएं जिंदगी के तक भी वो आपका क्वेश्चन पहुंच जाएगा
जी।
तो फिर हम दोनों मिलकर आपको उसका जवाब दे सकते हैं
इंशाल्लाह इंशाल्लाह,
ठीक है। और आप कोशिश कीजिए कि रابطे में हमारे साथ, यानी अगर हमें बीच में रखेंगे तो फिर हम आपके साथ, यानी क्या कहना चाहिए, मजीद रابطہ भी करवा सकेंगे। और अब हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया कैसर खान।
मैं एक सेकंड ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रोग्राम को बाद में सुन रहे हैं, जब लाइव नहीं है तो उस वक्त भी आप टैक्स कर सकते हैं, मैं बाद में भी हेल्प कर दूंगा। अगर आप ये रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, रीप्ले में, तो उस वक्त भी आप इस नंबर पे 0110040441860019 और मैसेज में जिंदगी लिख के भेजें, ताकि मुझे पता हो कि इस प्रोग्राम से आए हैं, तो आई विल हेल्प।
अच्छा, तो और हमने आपकी एक तस्वीर भी अपने फेसबुक पर पोस्ट की है, जिसमें हमने ये नंबर पोस्ट किया, जिस पर आपने ये नंबर दिया हुआ है टेक्स्ट मैसेज के लिए, तो बेहद शुक्रिया सिद्दीक साहब। एक हमारे हीरो भाई ने लिखा हमारे फेसबुक पेज पर कि हम जैसे गरीबों के लिए, क्या आपकी कंपनी में कोई जॉब है?
अच्छा, असल में ये जो गरीबों के लिए, पहली बात यह कि मैं भी गरीब ही था, अभी मैं दिल से अभी भी गरीब हूँ। वो ये पैसों की गरीबी और मेहनत नहीं होती, ये ना गलत डेफिनेशन है। अब ये फाइबर पे ये जॉब ही मैं बता रहा था, आप रोज का एक काम करें $5 का, उधर सिर्फ एक 10-15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है।
तो हीरो भाई आप जाइए FIVER.com पर, FIVER.com पर जाएं, वहाँ बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं जो आप घर बैठकर कर सकते हैं, और आपने समझ लीजिए कि अपने पांव पर थोड़ा बहुत आप खड़े हो जाएंगे। और ये उन सब के लिए जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि अगर आप घर से बैठकर कुछ काम करना चाहते हैं और आप बिल्कुल बेरोज़गार हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाइए, बहुत सारे जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, इतने कि आपके अपने स्टूडेंट लाइफ में जो खर्चे हैं वो निकल सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई बातें आपकी, आपके फेसबुक के हवाले से, लेकिन फिर भी अगर वो लोग जो कि ऑनलाइन नहीं जा रहे या ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, सरमाया का कारोबार करना कर रहे हैं और या करना चाहते हैं, उनके पास सरमाया है ही नहीं, सिर्फ स्किल्स हैं, तो फिर वो जो दरमियानी लोग हैं या ये जो दरमियानी फर्म्स हैं, उनको कांटेक्ट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना?
नहीं जी, कांटेक्ट करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, वो आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, आप उनको बताएं कि मेरा ये आइडिया है, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मैं बनाना चाहता हूँ, मेरे पास मतलब मैं इन्वेस्टर पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। ये असल मजे की मैं बात बताता हूँ आपको, ये ऑडियंस के लिए, कि जो लोग पैसे वाले हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। ये एक फनी सी बात है कि अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, तो यू आर इन अ रॉन्ग बिजनेस।
अच्छा,
इफ यू डोंट हैव मनी या यू डोंट हैव टाइम, यू आर इन अ रॉन्ग बिजनेस। या आपके पास पैसे होते हैं या टाइम होता है,
अच्छा,
दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होती यूजुअली।
अच्छा,
अगर दोनों ही नहीं है तो आप जो काम कर रहे हो इज नॉट गोइंग एनीवेयर,
तो उसको खत्म कर दें और कोई ऐसा काम ढूंढें जिसमें या तो आपके पास वक्त हो या आपके पास पैसा हो।
जी, अब जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास पैसे होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, इसी बात पे बात कर रहा हूँ ना। वो चाहते हैं बल्कि के जो जिस बंदे का कोई बहुत अच्छा आइडिया है, बड़ा यूनिक है, और वो कॉन्फिडेंट है कि वो कर सकता है, वो उसमें अपने पैसे वो खुद इन्वेस्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे, आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, LINKEDIN.com, फ्री है।
ये जरूरी है, फ्री है,
फ्री अच्छा, है। मैं हाँ। ये मैं बिल्कुल पाकिस्तान के लिए इसमें फ्री बात करूंगा ना सारी।
जी जी,
क्योंकि मैं भी उस वक्त यही सोचता था कि फ्री की कोई चीज मिला, ये पैसे क्यों मांग रहे हैं।
अच्छा, तो लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल डाल दें।
प्रोफाइल ये ऐसे अपना, जैसे रिज्यूमे, बायोडाटा, सीवी जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, बायोडाटा वगैरह, वो अपना पूरा वही आपने सारा लिख देना, उसमें अपना लिखें सारा, ऐसे समझे जैसे जो आपका इन्वेस्टर है ना वो पढ़ रहा है, आप दिमाग में ये सोचें कि इन्वेस्टर पढ़ रहा है ये रिज्यूमे ना।
अच्छा।
और वहाँ पे 300 मिलियन लोग हैं, जितने इन्वेस्टर हैं मेजोरिटी जो है वो सारे उस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। आप वहाँ से उनको कहें कि मेरे उनको रोज के दो चार लोगों को भेजना शुरू कर दें।
अच्छा।
और इवेंचुअली तो... अल्लाह ताला जब आपका काम होना होता हो जाता है, आपका काम जो है ना रिजल्ट आपका बिजनेस नहीं है, आपका काम जो है ना एफर्ट करना बिजनेस है।
एफर्ट आपका बिजनेस है और वो एफर्ट जाहिर है जो करता रहेगा उसको कामयाबी जरूर मिलेगी। इस वक्त टेलीफोन पर हमारे साथ पाकिस्तान से एक साहब मौजूद हैं, हम देखते हैं कि कौन है जिनसे जो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी जी, कौन साहब?
जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इसरार है जी।
जी
इसरार,
इसरार साहब जी फरमाइए, आपका आपने कहां से फोन?
मैं सदीक भाई के साथ, मेरी काफी पुराना ताल्लुक है इनके
अच्छा,
साथ।
अच्छा, अच्छा, इसरार साहब, इसरार शरीफ साहब।
जी जी इसरार शरीफ साहब।
इसरार शरीफ साहब बहुत शुक्रिया, हमने आपको भी खुद कॉल करना था लेकिन अच्छा हुआ कि आपने कॉल कर दिया। और हमने अभी अपने मेहमान से ये सवाल ज़रूर पूछना था और उन्होंने अभी बताया भी है कि वो अपने पाकिस्तान के लिए जो जो लोग जिनको ये अपना छोड़ कर आए हैं यहाँ पर अमेरिका में, उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो पहले मैं इनसे ये सवाल कर लूँ फिर मैं आप तक आपकी तरफ आती हूँ। सिद्दीक साहब बताइए कि आप अपने बाकी बातें बाद में करेंगे क्योंकि अब हमारे साथ इसरार साहब मौजूद हैं, क्या आपने अपने आबाई वतन पाकिस्तान को पे बैक करने के लिए कुछ किया या कर रहे हैं तो हमारे सुनने वालों को बताइए।
पहली बात ये है कि मैं सो थैंकफुल कि ऑफ कोर्स अपने मुल्क का होता है और ये मैं कितना भी करूँ वो थोड़ा है, ये पहली बात। ये नहीं मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं तो ये इतने लोगों ने मुझे हेल्प की हुई है, मैं उनका थैंकफुल अनाफ नहीं हो सकता, जैसे आप पेरेंट्स का अनाफ नहीं कर सकते ना। जो ये जो आपका कंट्री होता है ये भी मदर लैंड होती है ना, वो माँ ही होती है आपकी।
बिल्कुल बिल्कुल,
तो बिल्कुल उसी तरह मैं जितना भी करूँ वो कुछ भी नहीं है।
अच्छा,
अब मैं इसमें ये कर रहा हूँ, ये इसरार भाई के साथ इनकी नॉन प्रॉफिट है आल शरीफ फाउंडेशन, उधर फैसलाबाद के एरिया में, समुंदरी के एरिया में। अब ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। और ये अब अमेरिका में अपनी वो 501c3 रजिस्टर करना चाहते हैं। अब मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि एवरीबॉडी कैन लिसन इनके इसका मतलब क्या है। हालांकि इसमें एक तो ये आप पैसे की करके हेल्प कर सकते किसी की। अब मैं चूंकि ज्वाइंट वेंचर का बंदा हूँ, आई नो सो मैनी पीपल, अब मैं इनको अगर सही बंदे के सही रास्ते पे लगा दूँ, एक सही बंदे से कॉन्टैक्ट करा दूँ जो इनका ये काम कर दे, फिर उसके बाद चूंकि जितने ये अमेरिकन जो लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ सारे लोग बड़े अच्छे हैं, लोग ऐसे ही समझते हैं अमेरिका में ऐसे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने थोड़े थोड़े भी पैसे दें तो इनका माशाल्लाह जी ये इतने हजारों लोगों को रोज रोज खाना खिलाते हैं।
जी तो यही मैं इनसे पूछूंगी, इसरार शरीफ साहब आप बताइए कि आप वो कौन सा फलाही काम कर रहे हैं जिसमें हमारे सिद्दीक साहब आपके साथ तआवुन कर रहे हैं, हमारे सुनने वालों को बताइए।
हमें बिल्कुल जी, मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया है। और सदीक भाई ने जो हेल्प कर रहे हैं हमें, बेसिकली ये फैसलाबाद के साथ समुंदरी है, उसके साथ हमारा गांव है, वहाँ पे हम तकरीबन डेली लोगों को लंगर खिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हॉस्पिटल में भी होता है, फिर मंडी जो होती है जहाँ पे मजदूर लोग होते हैं वहाँ पे भी लोगों को खाना खिलाया जाता है।
अच्छा।
और ये तकरीबन 4000 लोगों का खाना होता है। और
तो,
इसके साथ साथ ये हॉस्पिटल के लिए अलहदा से भी हम बनाते हैं, क्योंकि जो जो पेशेंट्स होती हैं जिस तरह उनको खाने की रिक्वायरमेंट्स है वो डॉक्टर जो रिकमेंडेशन करता है उस लिहाज से उनका ख्याल भी रखा जाता है।
तो ये फाउंडेशन जो है किसने कायम की थी और किस मकसद से कायम की थी?
ये मेरे फादर ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, उन्होंने ये फाउंडेशन रखी थी। और जब उन्होंने अल शरीफ फाउंडेशन रखी, क्योंकि शरीफ उनका नाम था तो उन्हीं के नाम से हमने अल शरीफ फाउंडेशन रखा। तो ये हम तीन भाई हैं और उन्होंने हमसे कहा कि बेटा मैंने खाना शुरू करना है। मक्का में हम लोग बैठे हुए थे, उमरे पे गए हुए थे, तो उन्होंने हमें कहा कि बेटा ये इसको करना है। तो हमने कहा ठीक है जी बिल्कुल। तो जब हमने गाँव में ये शुरू किया खाना, तो रमजान का टाइम और सहरी के वक्त हमने लगाया, तो कुछ तकरीबन हम पूरी रात हम लगे रहे वहाँ पे, इंतजाम किया, लोग बहुत कम, एक दो आए लोग। तो मैंने अपने फादर को कहा कि जी ये गांव है, गांव में लोग नहीं खाते हैं खाना ना, क्योंकि शहर वगैरह में ये सारा होता है। और उन्होंने कहा नहीं कि बेटा आप लगे रहो। और माशाल्लाह जो उन्होंने फिर हमें बताया जिस तरह, और फिर इस तरह फिर लोगों का वहाँ पे आना और लोग उससे सेफ जाब हुए हैं खाने से।
अच्छा, तो ये सिलसिला कितने अरसे से जारी है?
ये 6 साल से जा रही है।
6 साल से जा रही है। और इसमें आप रोजाना 4,500 लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं और इसके अलावा भी आप कुछ और भी करते हैं, बच्चियों की शादी वगैरह का अरेंजमेंट भी होता है इस फाउंडेशन के तहत?
हमारे जी हाँ, बच्चियों की भी शादी का अरेंजमेंट होता है, जो 12 रबीउल अव्वल को हम लोग करते हैं शादियाँ, इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, वो तकरीबन कोई 50 से ज्यादा लोग उसमें शामिल होते हैं और उसमें मुसलमान और जो क्रिश्चियन होते हैं वो भी शामिल होते हैं और इनका भी इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम पूरा का पूरा अल-शरीफ फाउंडेशन ही करती है।
अच्छा, और उसमें आप जहेज वगैरह भी देते हैं बच्चियों को?
हाँ, उसमें जहेज वगैरह की चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होती हैं, जो चार यानी कि बेड होता है और जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं
बेसिक जहेज आपको
सबको देती हैं बेसिक चीजें।
तो ये सारा सरमाया जो फाउंडेशन का है वो कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से होती है?
अब फंडिंग हम लोग खुद भी करते हैं और फंडिंग जो है दो सहबाब हैं जो मिलके हैं वो भी हमें हेल्प करती हैं इसमें और इस तरह ये चलता है।
और आपके साथ अब आप आपके मिशन में शामिल हो गए हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान, और वो उनका अब ये कोशिश है कि आपकी इस फाउंडेशन की एक ब्रांच अमेरिका में भी खुल जाए ताकि इसको और वसत दी जाए। बेहद शुक्रिया शरीफ साहब, आपने हमारे इसरार शरीफ साहब आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मोहम्मद सिद्दीक साहब, हमारी गुफ्तगू अभी जारी है लेकिन एक ब्रेक का वक्त फिर हो गया है, तो पहले एक ब्रेक। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में। आज हमारे मेहमान हैं ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटी की एक मुमताज और कामयाब कारोबारी शख्सियत, जो कारोबारी दुनिया के इंतहाई कामयाब अफराद को कामयाब कारोबारी अफराद से मुंसलिक करके उन इंतहाई कामयाब अफराद को मजीद कामयाब और उन कामयाब अफराद को तेजी से इंतहाई कामयाब कारोबारी अफराद बनने में मदद दे रही है। हमारे मेहमान हैं एक डिजिटल मैगजीन्स पब्लिशर और जॉइंट वेंचर्स की एक कंपनी जेवी जीनियस के फाउंडर और सीईओ मोहम्मद सिद्दीक, जो कारोबारी दुनिया के एक जदीद तरीन प्लेटफॉर्म पर कारोबारी दुनिया की एक जदीद तरीन कम्युनिटी को जदीद तरीन अंदाज से कारोबार करने और उसमें हैरत अंगेज कामयाबी हासिल करने में मदद करती है। हमारे मेहमान मोहम्मद सिद्दीक इस वक्त मौजूद हैं जॉर्जिया अटलांटा से टेलीफोन पर हमारे साथ, और हमने मोहम्मद सिद्दीक के उन दोस्त को भी ढूंढ निकाला है मोहम्मद सिद्दीक की मदद से, खलील अहमद को पाकिस्तान से, जिन्होंने मोहम्मद सिद्दीक को वो कुछ बनाने में मदद की, पहला कदम रखा जो वो आज हैं। अस्सलाम वालेकुम खलील अहमद साहब। खलील अहमद साहब, बेहद शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और मोहम्मद सिद्दीक साहब लीजिए बात कीजिए खलील साहब से, क्या कहना चाहते हैं आप उनसे इस वक्त पूरी दुनिया के सामने?
जी खलील साहब अस्सलाम वालेकुम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिलियंस ऑफ द लोग जो सुन रहे हैं उनके सामने आई वांट टू से थैंक यू फॉर योर हेल्प।
नहीं नहीं, ये जिनसा है, मुझे तो कल आपने याद कराया कि मैंने आपकी कोई हेल्प भी की थी, पर मैं तो बिल्कुल ऐसी कोई बात हमारी जिंदगी में है ही नहीं कि किसी भी नेकी को याद रखा जाए।
नहीं, लेकिन असल में इसमें ये बड़ी अच्छी आपने बात की, ये देने वाले को याद नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को हेल्प की है, रिसीव करने वाले को कभी भूलना नहीं चाहिए कि उसने किसने हेल्प की है।
अच्छा, और सिद्दीक साहब ने आपको खलील साहब याद रखा, और हमने आपको यहाँ पर इसलिए मधु किया कि हम सुनने वालों को ये बता सकें कि ज़िंदगी में कभी आप किसी की मदद करें तो चाहे उस वक्त आपके जहन में ना हो कि आप ये जो मदद कर रहे हैं उसको आपको पे बैक कभी होगा, लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है कि आपको जो जिसकी आप मदद करते हैं वो आपको ज़रूर शुक्रिया अदा करता है, और आप वो खुशकिस्मत आदमी हैं जिन्होंने जो कुछ किया था उसकी मदद लाखों लोगों के सामने मोहम्मद सिद्दीक साहब कर रहे हैं, जो खुद अब बहुत सारे हज़ारों लोगों को की मदद कर रहे हैं। तो कुछ और कहना चाहेंगे मोहम्मद सिद्दीक साहब? खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खलील साहब आप आजकल क्या कर रहे हैं?
जी मैं आजकल एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है गारमेंट्स, उसमें मैं हेड ऑफ सप्लाई चेन हूँ।
अच्छा,
और ये भी उसमें मेरी सारी प्रोक्योरमेंट और सारा जितना भी वैल्यू चेन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका मैं हेड हूँ।
अच्छा, तो माशाल्लाह आपने अभी तक दूसरों की मदद का वो सिलसिला जारी रखा हुआ है जो एक अरसे से आप करते चले आ रहे हैं।
बड़ा एहसान है अल्लाह से, ये हमेशा हर किसी की यही दुआ होनी चाहिए कि उसका हाथ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत पर वल्ला ही रखे, और इखलास, इसके अंदर जो इखलास है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। दुनिया की कोई भी इसके अंदर तलब या उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी इंटेंशन की मैं इस वजह से कर रहा हूँ, بالکل ایسا اس میں اگر نہ ہو تو اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی
ہے. اور آپ اپنے ان سننے والوں سے جو کہ یعنی مالی طور پر مستحکم ہیں کچھ کہنا چاہیں گے کہ جب کوئی طالب علم آپ کے پاس آئے اور آپ سے اپنے علم کے لیے کوئی مدد طلب کرے تو کیا فرض ہونا چاہیے ان کا؟
دیکھیں جی, جو زندگی تو گزارنی ہی دوسروں کے لیے چاہیے. اپنے لیے تو انسان تھوڑے سے کھانے میں اور تھوڑے سے کپڑوں میں گزارا کر لے, یہ بالکل ممکن ہے. اور دوسروں کے لیے جو زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ اس کو سب سے زیادہ بینیفٹ اس دنیا میں بھی ہوگا, برکت اس کو بھی ملے گی. اور جتنا اخلاص کے ساتھ اور کسی بھی قسم کی اس دنیا میں ریوارڈ یا کوئی حب مال یا حب جاہ کے بغیر اگر کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو گزارے گا تو اللہ اس میں ضرور برکت دے گا اور اس کو اس دنیا میں اس کے ثمرات نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور آخرت میں تو جیسے ہم سب کا ایمان ہے وہ تو ضرور ملے گا سب کو.
بے حد شکریہ خلیل احمد صاحب, آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور ہم آپ کا اور صدیق صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو ہم تک پہنچایا جو ایک بہت نیک کام کرنے کا عادی ہے شروع سے اور آج تک یہ چلا جا رہا ہے, اور وہ ایک تحریک بن سکتے ہیں دوسرے سننے والوں کی کہ جب بھی کسی کو, خاص طور پر کسی اسٹوڈنٹ کو اپنی تعلیم کے سلسلے میں یا کسی کو اپنے روزگار کے سلسلے میں مدد کی ضرورت ہو اور آپ کر سکیں تو ضرور کیجیے. تو گفتگو کو اب آگے بڑھاتے ہیں, خلیل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو خدا حافظ کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک بار پھر محمد صدیق صاحب, کچھ یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بہت سارے میگزینس کی بھی بات کی اور آپ نے یہ کہا پروگرام سے پہلے کہ آئی میک ہیپی پیپل ہیپیئر, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ نہیں, جو بہت زیادہ ہیپی نہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں آپ. تو آپ نے اپنی فیملی کو ہیپیئر اور ہیپیسٹ بنانے کے لیے کیا کچھ کیا اب تک؟
اپنی فیملی کو تو مطلب ماشاء اللہ میری ایک بیٹی ہے ابھی ہائی اسکول میں ہے, اور میری بیوی بھی ماشاء اللہ یہاں پہ کر رہی ہے, اور وہاں پہ پاکستان میں جو میرے بردر سسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں, ان کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. لیکن وہ صرف پیسے یہاں سے مطلب دے سکتے ہیں, باقی پڑھنا تو انہوں نے آپ ہے. تو صرف پیسہ جو ہے نا وہ ویری اسمال چیز ہے, یہ کسی کو فش دے دو کہ کھا لو. اصل میں اب میں اس چیز پہ پہنچا ہوں اتنے سالوں کے بعد کہ کسی کو کھانا دینے سے کام نہیں ہوتا, کسی کو یہ ٹیچ کرو گے یہ کھانا ارن کیسے کرنا ہے.
مچھلی پکڑنا سکھاؤ
تاکہ وہ پکڑتا رہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا رہے گا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مچھلی دینے سے تو کھا کے اگلے 3 گھنٹے بعد دوبارہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے.
اچھا, تو یہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی مچھلی پکڑنا سکھائیں اور تاکہ وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو سکے, اور یہ نہیں کہ وہ زندگی میں کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کرے بلکہ اپنے زور بازو سے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے, اور وہ کچھ کرے جو وہ کرنا چاہتی ہے. اچھا, جو لوگ اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان کو اگر میں کہوں کہ آپ نے ابھی کچھ تو بتایا کہ جوائنٹ وینچرز کو آپ نے کہا کہ بیس ہے بزنس کو آگے بڑھانے کی, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ آپ گائیڈ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو آن گراؤنڈ موجود ہیں؟
جیسے یہ آن لائن کام کا تو میں نے آپ کو fiverr.com کا بتایا نا, fiverr.com.
جی جی.
باقی جو کسی کی دکان ہے یا دوسرے کوئی کام ہے جو لوکل, وہ اب اس میں ان کو چاہیے کیا, بندے کو پہلے تو خود پتا ہونا چاہیے کہ مجھے چاہیے کیا, پھر وہ چاہنے کے لیے ایسا, ہاں مجھے جی اور پیسے چاہیے, حالانکہ ضروری نہیں پیسے چاہیے, بس اس کا دماغ یا پیسے ہیں یا چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہو درمیان میں نا. اصل میں اس کو سیکھنا ہے کہ اس کو آگے بڑھانا کیسے ہے.
ہاں, تو وہ بیسک اصول کیا ہیں جو بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے, کسی بھی جگہ کوئی بھی بزنس کا جو شخص ہے وہ بزنس کر رہا ہے تو کیسے بڑھائے اپنے بزنس کو؟
کوئی کسی بھی ٹائپ کا بزنس آگے بڑھانے کا اصول ایک ہی ہے, اس بزنس میں جو بڑے لوگ ہیں اسی بزنس میں انہوں نے, وہ بھی اس طرح چھوٹی دکانوں والے ہی تھے پہلے, ویسے وہ نظر نہیں آ رہا نا, وہ پہلے 10-20 سال پہلے ہوتے ہیں نا, ان سے سیکھو کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو چھوٹی دکان سے بڑی پہ کیسے لے کے گئے, اور پلس کہ انہوں نے کون سی غلطی کی جو میں اوائڈ کر لوں, یہ اس کو ایکسپیرینس کہتے ہیں نا, تجربہ ہو گیا, اس سے تجربہ سیکھو.
اچھا,
پھر وہ بتائیں گے آپ کو تھوڑے سے پیسے چاہیے باقی یہ کر لیں. جب آپ اس کے, بلکہ یہ میں بتاؤں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا آپ سے, جب اس کے پاس اپنے کوئی انٹیلیجنٹ بڑے عقل مند کوشچن لے کے جاتے ہیں نا, سوال پوچھتے ہو, ان کو جب سمجھ آ جائے گا یہ بندے کو کام کا پتا لیکن صرف پیسوں کی کمی ہے نا. آپ امیجن کریں گے ایک بہت بڑا بندہ آپ کے ایریا میں ہو, جس کا دکان ہو یا کوئی بھی کاروبار آپ کے اپنے کاروبار کے سلسلے میں, وہ تھوڑی سی بھی آپ کو مدد کر دے نا, پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آپ 100 روپے میں چیز لے کے 150 میں بیچ رہے ہو, وہ تو اتنا والیوم لے رہا ہے اس کا, تو وہ 50 روپے میں لے رہا ہوگا نا. तो वो सिर्फ यही कर दे कि यार जहाँ से मैं लेता हूँ ये चीज वहाँ से ले लिया करो, मेरी मेरी जो खरीद है ना वो 50 रुपए की है, तो आपका तो 50 रुपए प्रॉफिट ये अगले सेकंड में बढ़ गया ना, आपको तो पैसे तो 50 रुपए और एडिशनल मिल गए, जो एडिशनल कोई नया कस्टमर भी नहीं चाहिए आपको, जो आपके क्लाइंट हैं जो जो गाहक हैं वो तो वही है ना, और आपका प्रॉफिट 50 रुपए बढ़ गया सर इतनी सी बात करने से, अगर बंदा थोड़ी सी भी हेल्प कर दे, आप जो बंदा आपकी हेल्प कर रहा है उसको तो कुछ उसका क्या नुकसान होगा, कुछ भी नहीं।
अच्छा, तो ये बेसिक उसूल हैं जो अच्छा कारोबार करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें वो जो दयानतदारी वगैरह, जो अखलाक वगैरह, उनकी अहमियत
बहुत अहमियत है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अगर आपकी कोई नो इंटेग्रिटी नो बिजनेस, अगर आप अंदर से साफ नहीं है और आप जो कमिट करते हैं वही आप करते नहीं। इस्लाम में हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि जो आप जो आपने करना है ना, जो आपने किसी को अगर यस हाँ करनी है तो वो वही करो जो आपने काम करना है, वरना तो आपने बद्दअंती कर ली ना, प्रॉमिस तोड़ दिया। तो इसमें भी वही एक बिजनेस में भी वही उसी को अपनाएं, अगर आप अंदर से फ्रॉडी हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसी हाँ कर दिया यार मैंने ऐसी हाँ कर दी बस ताकि जान छुड़ा लूँ, इससे ना उससे काम नहीं होता।
और इसी तरह यहाँ अमेरिका में अगर कोई कारोबार करना चाहे, वहाँ पाकिस्तान में बैठकर या ऑनलाइन करना चाहे, उसके लिए वो क्या करे?
मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फाइबर का मैंने बताया, मैं बार बार उसका बता रहा हूँ। मैं एक बंदे को इंडोनेशिया में जानता हूँ, मिला तो कभी नहीं हूँ ना, उसको इंग्लिश नहीं आती और मुझे उनकी अपनी जुबान नहीं आती, ठीक है। वो $20,000 बना रहा है वहाँ बैठा हुआ
इसी फाइबर के,
$5 करके। अच्छा। ये इसमें सिर्फ वो $5 तो छोटी सी चीज है ना, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये मैं यूरोप में भी एक बंदे को जानता हूँ जो तकरीबन $20,000 से ज्यादा बना चुका है इससे। आप इमेजिन करें पाकिस्तान में बैठा $20,000 तो वो करोड़ों में जाता है ना काम, लाखों में जाता है।
लेकिन अगर वो ये तो होगी ना ऑनलाइन बिजनेस की बात, लेकिन अगर वो यहाँ कोई चीज भेजना चाहे, एक्सपोर्ट करना चाहे, तो इंडिविजुअली
वो भी कर सकता है, क्योंकि लिंक्डइन पे आप जाएं, जिस चीज का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ के यहाँ के एजेंट होते हैं उस टाइप के ना, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो डीलें आपस में कराते हैं ना दोनों साइडों पे, आप एंड पे जिस कंपनी को आपने चीज भेजना चाहते उसको ना कॉन्टेक्ट करो, वो खुद नहीं चाहते पाकिस्तान से डील करना, दरमियान में लोग होते हैं ब्रोकर डीलर जिसे कहते हैं, आप उन डीलर से रابطہ करो।
अच्छा,
वो लिंक्डइन पे सारे अवेलेबल हैं, आप उनसे कहो कि ये मेरी चीज है, मैं ये सप्लाई कर सकता हूँ, और ये मेरा, उनके पास बहुत बहुत स्टोरों के गाहक होते हैं ना।
अच्छा,
उनसे रिलेशनशिप बना लो, वो आपके वो सप्लाई शुरू करा देगा।
अच्छा, तो ये हो गई कि अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर कोई बिजनेस करना चाहे किसी दूसरे मुल्क में, तो वो डीलर्स को ढूंढे।
जी जी,
ये है जदीद तरीका।
जी जी,
और ये ऑनलाइन। लेकिन ये बताइए कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटियों में और निसाब पढ़ाया जाता है, क्या आप समझते हैं कि उनमें ये प्रैक्टिकल बिजनेस की जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो काफ़ी हैं?
ये वैसे पूरी दुनिया में नहीं है काफ़ी। असल में अब ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, वो तो किसी को नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, बिजनेस के लिए तैयार नहीं किया जाता कभी भी।
अच्छा,
वो जो ये पुराने जमाने का सिस्टम है, अमेरिका में भी यही हाल है कि उन्होंने वो जो बड़े बड़े जो बिलियनर्स लोग थे, उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए सारा सिस्टम शुरू कराया था ना, वो अभी भी ऐसे चल रहा है। तो बिजनेस का जो काम है, जो लोग बिजनेस में, आप उन्हीं से सीख सकते हो, एजुकेशन सीखो ताकि आपको सीखना समझ आ जाए। ये जो डिग्री होती है ना, वो कहते हैं हाँ इसने एमए किया हुआ है, एमए का मतलब, मैं तो कहते हैं एमए किया हुआ है, जब उसे बात करो तो पता ही नहीं चलता किसने एमए किया हुआ है कि नहीं।
तो इसका मतलब ये कि ये जरूरी है कि अगर आपने बिजनेस के शोबे में आना है तो बिजनेस के लोगों में उठे बैठे।
बिल्कुल, आपकी जो इनकम है ना किसी बंदे की, उस मैं भी शामिल हूँ उसमें, आप भी शामिल है और जो सुन रहा है उसकी भी शामिल है, उसके जो बेस्ट 5 फ्रेंड्स है ना उनकी एवरेज है, औसत ले लेना अगर आप।
जी जी,
मैं अगर मैं लेट से मैं आपसे पूछूं कि आप कितने पैसे बनाती हैं, तो वो तो बड़ा पर्सनल सा सवाल हो जाता है ना। अगर मैं आपके पूछूं आपके 5 फ्रेंड्स कौन से हैं, उनकी क्या इनकम है, जो उनकी सबकी जो औसत आएगी वही आपकी इनकम है, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी का इंग्लिश में कहते हैं यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो अगर आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये नहीं कि पुरानों को छोड़ दें, वो भी फ्रेंड रहेंगे, लेकिन आपके जो क्लोज फ्रेंड हैं, बिजनेस वाले जो फ्रेंड हैं, वो आपसे बड़े लोग होने चाहिए। वो क्या कि जब आपको कोई हेल्प होगी तो वो हेल्प भी कर देंगे, प्लस आप उनसे सीखोगे भी, प्लस अगर चूंकि उनकी इनकम आपसे ज्यादा है तो आपकी इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये वर्ल्ड वाइड प्रोवन फैक्ट है।
अच्छा, तो बेहद शुक्रिया, मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपने हमारे सुनने वालों को کامیاب بزنس کرنے کے گر بتا دیے اور بڑے سادے اور آسان طریقے سے بتا دیے. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. آپ کو خدا حافظ کہتے ہوئے ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ آج ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے مہمان تھے آن لائن بزنس کمیونٹی کی ایک ممتاز اور کامیاب کاروباری شخصیت, جو کاروباری دنیا کے انتہائی کامیاب افراد کو کامیاب کاروباری افراد سے منسلک کر کے ان انتہائی کامیاب افراد کو مزید کامیاب اور کامیاب افراد کو تیزی سے انتہائی کامیاب کاروباری افراد بننے میں مدد دے رہی ہے. آپ تھے محمد صدیق اور ہمارے ساتھ آج پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے لینس ریمگس. یاسمین جمیل کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.